मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 28 जुलाई 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, कल मैंने हमारे जीवन दर्शन में धीरे धीरे जो बदलाव आ रहे हैं और इनफैक्ट सच पूछिए तो अब वे बदलाव एक प्रकार से स्थायी रूप ले चुके हैं, उन परिस्थितियों के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। देखिए, जो परिस्थितियां होती हैं डेफिनेटली हम सब उसकी निर्मिति होते हैं, यानी कि उनका मुकाबला कर पाना, उनसे ऊपर उठकर अपना कुछ नए तरीके से निर्माण कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन दोस्तों, इसी समाज में ऐसे लोग हर युग में रहे हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियों का विरोध किया है, या यूं कह लीजिए कि उससे ऊपर उठकर अपने निर्माण को अंजाम दिया है, यानी कि वो अपनी परिस्थितियों से उतने प्रभावित नहीं हुए, युगीन परिस्थितियों से, व्यक्तिगत परिस्थितियों से नहीं, और उन्होंने अपना जीवन दर्शन विकसित किया। फ्रेंड्स, यहां जो मैंने जीवन दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया है वो जानबूझकर किया है। सामान्यतया हम जीवन दर्शन को समझ नहीं पाते हैं। इनफैक्ट जीवन दर्शन पूरी तरह से हमारे जीवन के केंद्र में होता है, यह हमारे जीवन के सेंटर में होता है, न्यूक्लियस की तरह, और हमारी जो दूसरी गतिविधियां हैं, चाहे वो विचार से संबंधित गतिविधियां हों, चाहे वे कर्म से संबंधित गतिविधियां हों, चाहे वो व्यवहार से संबंधित गतिविधियां हों, या यूं कह लीजिए कि जीवन को जीने के जो तौर तरीके होते हैं उनसे संबंधित एक्टिविटीज हों, वे सब के सब हमारे जीवन के इस केंद्रीय दर्शन के चारों ओर ही रिवॉल्व होती रहती हैं, घूमती रहती हैं, ठीक उसी तरह से जैसे सूर्य के चारों ओर अलग अलग ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन इनफैक्ट हम समझ नहीं पाते, हम सारी बातों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में लेते हैं। लेकिन अगर कभी आप इत्मीनान से शांति के साथ बैठकर अपने उन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक कोई चीज बनाए तो जो तस्वीर उभर करके आएगी वही तस्वीर इनफैक्ट हम सबके अपने अपने जीवन दर्शन की तस्वीर होती है। लेकिन ये बात सामान्य तौर पर समझ में नहीं आती, लेकिन एक उम्र के बाद ये समझ में आएगी ही आएगी, यह तो मेरा पक्का विश्वास है। तो दोस्तों, कल की बात सुनने के बाद हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में यह बात आई हो कि मैं महत्वाकांक्षा का विरोधी हूं, यानी कि मैं आपसे यह कह रहा हूं कि नहीं, किसी को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, बस इस सिद्धांत को लेकर के चलें जो हम मध्यकाल में कहा गया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सवाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, यानी कि बस इतना मिल जाए कि जो कुटुंब है, जो परिवार है, उसका काम चलता रहे, हमारे यहां भी कोई भूखा ना हो, और फिर जब कोई अतिथि आए तो वह भी कभी भूखा ना जाए, हम उनका भी पालन पोषण कर सके, यानी कि बस इस तरह का संतोषी जीव हमें बने रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इसे बहुत ज्यादा इस लेवल पर लेकर के सोचते हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, यानी कि केवल पेट भरा रहे, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो बातें कही गई हैं उन्हें हम ठीक से समझ नहीं रहे हैं, उनके साथ हम ठीक से न्याय नहीं कर पा रहे हैं। यहां जो इनफैक्ट बात कही जा रही है वह महत्वाकांक्षा को बिल्कुल एक अव्यावहारिक सीमा तक बढ़ने से रोकने की बात कही जा रही है। यह नहीं कहा जा रहा है कि आप काम मत कीजिए, ज्यादा काम करने से क्या फायदा है, यहां कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं है, सारे के सारे जो शब्द हैं वो सकारात्मक हैं। साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए को आप केवल अपने घर में आने वाले साधु के रूप में क्यों लेते हैं, दूसरों के रूप में लीजिए, समाज के रूप में लीजिए, राष्ट्र के रूप में लीजिए, लेकिन जब हम क्या दूसरे कोई और काम करें या अपने काम से हट करके अगर, या यूं कह लीजिए कि हम उसे जब बड़ा बनाना चाहें तो क्या उसमें कहीं संतोष बाधा बनती है। लेकिन हमारे दिमाग में यह बात डाल दी गई है कि सेटिस्फेक्शन का मतलब है इनर्शिया, जैसे ही हमारे मन में संतोष का भाव आता है वैसे ही हम वहां रुक जाते हैं और ये लगता है कि यार बस जो कुछ भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है और अब क्या करना है ज्यादा काम करके। नहीं, तो हमारे यहाँ का जो संपूर्ण जीवन दर्शन है वो बिल्कुल विपरीत है। आप देखिए कि हमारे यहाँ कभी भी किसी ने भी ऐश्वर्य का विरोध नहीं किया है। ऐश्वर्य कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ईश्वर शब्द है वो ऐश्वर्य से ही जुड़ा हुआ हो। कृष्ण खुद द्वारकाधीश हैं, राजा हैं, शासक हैं, शासक तो गरीब नहीं होता। राम राजकुमार हैं, अयोध्या के शासक बने, वे भी तो राजा हैं। बुद्ध क्या है? राजकुमार थे। महावीर स्वामी क्या थे? राजकुमार थे। तो अगर हम सच में ऐश्वर्य के इतने विरोधी होते तो इनको भगवान नहीं मानते, क्योंकि हम तो ये सोचते कि भैया इनकी जो बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है वही ईश्वर बनने लायक नहीं है, तो हम इन्हें ईश्वर कैसे मान सकते हैं? लेकिन हमने इन्हें ईश्वर माना है। इनके मंदिर हैं, ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ये हमारे पूज्य हैं। इसी से यह बात पता लगती है कि वास्तव में कर्म के बारे में जो हमारे पूर्वजों ने सोचा है उसे किस रूप में सोचा है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो दृष्टि थी वह दृष्टि थी बेहतरी के लिए काम करना। आप काम कर रहे हैं, आप उस काम का लुत्फ उठाइए, उस काम का भरपूर आनंद लीजिए। हमारे यहां कभी भी काम को और जीवन को अलग अलग बांट कर नहीं देखा गया है, दोनों बिल्कुल एक हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी का एक तिहाई वक्त काम में लगा रहा हूं, और हर कोई इतना वक्त लगाता है, तो आप फिर बताइए कि अगर मैं अपने उस काम का लुत्फ नहीं उठा रहा हूं, उस काम का आनंद नहीं ले रहा हूं, तो सीधी सी बात है कि मैं अपनी जिंदगी के एक तिहाई भाग को बेकार कर रहा हूं, और जो दूसरा एक तिहाई है वो ऑलमोस्ट सोने में चला जाता है। तो बचा क्या? मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है कितनी? एक तिहाई। और उस एक तिहाई में मैं दूसरे किस्म के जद्दोजहद में उलझा रहता हूं। तो मैं जो फोकस तरीके से बड़े अनुशासन के साथ ध्यान पूर्वक जो काम करता हूं वो यही तो है एक तिहाई, जिसे आप कर्म कह लीजिए, जिसे आप नौकरी कह लीजिए, जिसे आप व्यापार कह लीजिए, जिसे आप पढ़ाई कर लीजिए, जिसे आप खेती बाड़ी कह लीजिए, जिसे आप मजदूरी कह लीजिए, जो आप नाम देना चाहें आप दे लीजिए, क्योंकि इससे हमारा पोषण हो रहा है, और जिससे भी हमारा पोषण हो रहा है वह हमारे लिए पूज्य है, उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। दोस्तों, धरती को हमने माता माना है। किस युग में माता माना? उस युग में माता माना जब हमारे यहां कृषि प्रधान संस्कृति थी, क्योंकि धरती हमारा पोषण कर रही है, धरती से अन्न उपजता है। गाय को हमने माता माना किस युग में? पशुपालन के युग में, क्योंकि गाय हमें दूध दे रही है, उससे हमारा पोषण हो रहा है, और फिर जो गोबर वगैरह है उससे तो खेती बाड़ी हो ही रही है। तो आप देखिए कि भारतीय दर्शन ने जो पोषण करने वाला है उसे कितना बड़ा स्थान दिया है, और दिमाग में नहीं बल्कि दिल में स्थान दिया है। चेतना की बात नहीं है, संस्कृति में स्थान दिया है। तो क्या आज हम जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में इसी तरह का भाव नहीं होना चाहिए? और जैसे ही दोस्तों आपके अंदर इस तरह का भाव आएगा, आप देखेंगे कि आपके अंदर के जो तनाव हैं, दबाव हैं, चिड़चिड़ाहट है, झल्लाहट है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो धीरे 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 कम होने लगेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये समाप्त हो जाएंगे, और उसी दिन आप समझेंगे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, उसका भावार्थ क्या है। अभी तो हम सब शब्दार्थ तक रुके हुए हैं। तो दोस्तों, अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।